अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9, भारत में 9:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के शिकार मजीद 4 अफराद की हलाकत के बाद इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए दारुल हुकूमत रियाद समेत दीगर कई बड़े शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत दाखिला का कहना है कि कर्फ्यू रियाज, तबूक, दमाम, ताइफ, कतीफ और जद्दा समेत कई बड़े शहरों में नाफिज किया गया है ताकि शहरियों को घरों में रखा जा सके। कर्फ्यू के दौरान लोगों को तिब्बी सहूलियात या अशियाई खुर्दनोश की खरीदारी के लिए सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक घरों से निकलने की इजाजत है। शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते आमद रफ्त के लिए बंद हैं। कर्फ्यू का इतलाक मंगल तक के लिए है। गुज़श्ता जुमेरात को सऊदी हुकूमत ने मुसलमानों के लिए मजहबी लिहाज से इंतहाई अहमियत के हामिल शहरों मक्का और मदीना में भी 24 घंटों के लिए कर्फ्यू में तौसी करते हुए इसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए नाफिज किया था। सऊदी अरब में पीर को कोरोना वायरस से मजीद 4 अमवात के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 38 हो गई है। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र में पीर को कोरोना वायरस के यौमिया केसेस की अब तक की सबसे बड़ी तादाद रिपोर्ट हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 277 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और एक शख्स हलाक हुआ है, जिसके बाद मुल्क भर में कोविड-19 के मरीजों की मजमूई तादाद 2076 हो गई है, जबकि हलाकतें 11 हैं। मिस्र में गुज़श्ता 24 घंटों में 149 मजीद केसेज रिपोर्ट हुए हैं और 7 हलाकतें हुई हैं। मिस्र में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 1322, जबकि हलाकतें 85 हो गई हैं। ख्याल रहे कि मिस्र अरब ममालिक में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, जो लगभग 10 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। मिस्र में भी कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। दूसरी जानिब कुवैत की हुकूमत ने मुल्क भर में जारी दफातर और स्कूलों की तातीलात में 26 अप्रैल तक तौसी कर दी है, जबकि 2 गुंजान आबाद अजला को मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कुवैत में भी जुजवी कर्फ्यू नाफिज है, जिसके औकातकार मजीद 2 घंटे बढ़ा दिए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 4000 से तजावज कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 577 नए केस सामने आए हैं, जो हालिया अरसे में एक दिन में सबसे बड़ी तादाद है। कोरोना के 2254 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 429 ने इस मरस को शिकस्त दे दी है। कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी गुजरगाहों की बंदिश के नतीजे में पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हजारों अफगान बाशिंदों के लंडी कोतल और जिला खैबर के दीगर गांवों में जमा होने के बाद हुकाम ने मंगल के रोज तोरखम की सरहद को मुकम्मल तौर पर खोल दिया। सरहद खोलते ही हजारों की तादाद में लोग अफगानिस्तान वापस रवाना हुए। एक रोज कबल तोरखम और चमन की गुजरगाहों को 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक रोजाना की बुनियाद पर 1000 लोगों को अफगानिस्तान वापसी के लिए खोल दिया गया था। पाकिस्तान के वजीर ममलकत शहरयार आफरीदी ने अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजरीन से अपील की है कि लॉकडाउन से मुतासर अफगान मुहाजरीन की फौरी मदद की जाए। उनके बकौल पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है, लेकिन मुहाजरीन को दरपेश मुश्किल कम करने के लिए मजीद वसायल की जरूरत है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद, सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स के कोरोना वायरस के पेश नज़र कैदियों की रिहाई से मुतालिक फैसलों को कलअदम करार देते हुए रिहा किए गए कैदियों को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की कैदियों से मुतालिक सिफारिशात तस्लीम कर ली हैं। अदालत ने करार दिया है कि हालात चाहे कैसे ही क्यों ना हों, कानून का कत्ल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की आला अदालत ने हुकूमत को हिदायत की है कि वो ईरान और अफगानिस्तान से लगने वाली सरहद पर मुनासिब करंतीना मराकज कायम करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंगल के रोज वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को हुक्म दिया कि ईरान और अफगानिस्तान की सरहद के साथ 2 हफ्ते के अंदर मुनासिब करंतीना मराकज कायम किए जाएं, जिनमें तमाम जरूरी सहूलियात मौजूद हों। हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के 22 मुल्क भर में सनअतें बंद होने और कारोबारी जिंदगी मुतासर होने के सबब 1,20,00,000 अफराद को फी खानदान 12,000 रुपये की इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। रकम की फराहमी बुध 8 अप्रैल से शुरू हो रही है। कोयटा में डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ बलूचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमले की हड़ताल जारी है और पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर जदीद तिब्बी आलात और हिफाजती किट्स कोयटा भिजवा दी गई हैं। खबरें खत्म हुईं।
अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से कोरोना के बारे में अपने पहले पहले प्रोग्राम के साथ, जिसे स्टूडियो की बजाय घर में तैयार किया गया है, मैं हूं यास्मीन जमील। कोरोना की आलमी वबा की वजह से दुनिया भर में अरबों लोग अपने घरों में बंद रहने की पाबंदी कर रहे हैं। यहाँ अमरीका और तरक्की याफ्ता मुल्कों में बहुत से लोगों को ये सहूलत भी हासिल है कि वो अपनी जरूरत की अशिया ऑनलाइन या टेलीफोन पर ऑर्डर करके घरों ही में मंगवा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को अपनी जरूरी चीजें खरीदने के लिए जाहिर है बाहर निकलना ही पड़ रहा है। तो इस आमद और रफ्त को कोरोना से महफूज रखने की एक कोशिश में दुनिया के कुछ मुल्कों में पब्लिक मकामात पर और अहम इमारतों के सामने डिसैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट्स बनाकर रखे गए हैं। पाकिस्तान में भी इस जानिब तवज्जो दी जा रही है और पंजाब के शहर झंग की इंतजामिया ने अपने मकामी वसाइल को इख्तराई तरीके से इस्तेमाल करके शहर की सब्जी मंडी के लिए एक सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट बनवाकर नस्ब किया है और इस मसले से निपटने की एक कोशिश की है। हम इस वक्त आपको गुफ्तगू सुनवा रहे हैं झंग के डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू की, जिन्होंने इस वॉक थ्रू गेट की इख्तरा में अहम किरदार अदा किया। तो लीजिए उनकी गुफ्तगू सुनिए।
जी, इसमें मैम हमारे, आपको पता है कि सब्जी मंडी जो है तो वो सबसे ज्यादा गैदरिंग वहां पे होती है और सबसे ज्यादा लोग भी वहां पे इकट्ठे होते हैं। तो वहां पे एक इशू आ रहा था कि हमने लोग खड़े किए हुए थे डिसैनिटाइजेशन के लिए, लेकिन वो इस पे पूरा नहीं उतर पा रहे थे क्योंकि लोगों का जो है वहां पे बहुत बड़ा क्राउड होता है। तो ये जब मसला जो है कि एक मीटिंग में सब्जी मंडी की जो हमारे इंतजामिया के लोग है उन्होंने उठाया कि ये मसला दरपेश है और यहाँ से कोरोना की एपिडेमिक जो है तो वो फैल सकती है, तो इस पे मैं जो एक आइडिया जो मैंने एक आधा जो है कि वो देखा था कि हमारे एक काउ के फार्म का वहां पे भी जो है पेशावर जो जेन में था, तो मैंने एक जो एक इरादा किया कि इसको जो है कि हम एक सेंट्रल जो है एंट्री पॉइंट में डिसैनिटाइजेशन गेट जो है वो बना सकते हैं। तो उसका बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर था वो मेरे माइंड में था, वो मैंने ड्रॉ किया और अपने जो इंजीनियर जो थे उनको बुलाया कि इसको हमने एग्जीक्यूट कर। तो उस पर फिर जो है डिस्कशन होती रही और उस डिस्कशन के बाद जो है कि अभी तीन जो जो लोग थे उनको हमने इंगेज किया, हेल्थ वो यूजफुल रहेगी कितनी हम डालेंगे। फिर हमने वाटर मैनेजमेंट के इंजीनियर जो हमारे थे जो जिनसे हमें तक पूरा सिस्टम लगा के देंगे, तो उनको हमने बुलाया। उसके बाद जो है हमने मैंने जो एक डीएमए के साथ इंजीनियर थे उनको बुलाया, वो जो हमारे सीओ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको बुलाया और उनको बताया कि ये हमने स्ट्रक्चर जो है कि इस तरह बनाना है। वो स्ट्रक्चर जो है फिर हमने बनवाया, इसको शुरू किया, साथ ही दूसरी साइड पे साइमल्टेनियसली हमने वो उसके पंप जो है वाटर के जो उसको पंप करने के लिए, फिर उसकी जो पाइपिंग है, फिर उसकी जो नोजल थी फॉग बनाने वाली वो हमने साइमल्टेनियसली जो वाटर मैनेजमेंट हमारे लोग हैं इंजीनियर उन्होंने वो उस पर काम शुरू कर दिया। फिर हमने इसको स्ट्रक्चर को जोड़ के फर्स्ट ट्रायल जो है कि रात 1 बजे हमने लिया, 2:30 बजे ये हमने डिसाइड किया था, तो इसका फर्स्ट ट्रायल लिया। तकरीबन 3 ट्रायल के बाद हमने इसको पूरा सिस्टम को बनाने के बाद फिर इसको हमने जो वर्कशॉप जिस पे बनाया था वहां से इसको शिफ्ट किया सब्जी मंडी में। तो फिर इसका हमने फर्स्ट ट्रायल जो है कि वो सुबह 9 बजे किया, तो 10 घंटे तक मेरे इंजीनियर और मैं हम लोग इस पे लगे रहे। तो ये 10 घंटे में हमने बनाया, तो इसको हमने फिर
तो क्या ये जो 10 घंटे में बना इसका क्या साइज क्या है और इसकी आपने, मुझे अभी तक ये सवाल समझ में नहीं आ रहा कि इसका आइडिया आपको कैसे आया और कैसे आपने ये समझा कि आप ये बना लेंगे और ना सिर्फ आपने बनाया बल्कि इसको आपने इंस्टॉल भी कर दिया। तो क्या आपका अपना कोई बैकग्राउंड था इसमें या सारे इंजीनियर्स ने मिलकर कोई आइडिया दिया था?
नहीं मैम, इसमें आइडिया तो बेसिक मेरा अपने से, मैंने आपको बताया कि मैंने एक फार्म देखा था काउस का, तो वहां पे वो नोजल लगी हुई थी वो एंट्री पॉइंट पे इंटरलूप एक इधर फार्म है अपना फैसलाबाद में, तो वो मुझे एक आइडिया था कि अगर हम इसको सेंट्रली जो है कि वो फॉगिंग सिस्टम लगा दे तो उसमें से इंटर हो के सारे जा सकते हैं और आ सकते हैं। लेकिन जब ये आइडिया मैंने बनाया तो उसके बाद जो है तो वो स्ट्रक्चर की जो उसकी क्या शेप होगी, तो उसको एग्जीक्यूट हम कैसे करेंगे, फिर उसके वाटर सिस्टम, फिर उसके इंजीनियर जो है कि वो बुलाए कि ये मैं ये काम करना चाह रहा हूँ इसको जो है कि वो हमने इसको एग्जीक्यूट करना है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है कि किस तरह का हो, उस स्ट्रक्चर पे फिर हमारी डिस्कशन हुई, स्ट्रक्चर हमने फाइनल किया। फिर उसका जो है कि फॉगिंग सिस्टम जो है कि वो कैसे होगा, क्लोरीन का जो टैंक है वो पानी वाला वो कहाँ पे रखेंगे हम, वो जो एक हमारा पंप है वो कहाँ पे रखेंगे, पाइप किस साइज का हुआ, वो फिर इंजीनियर ने उस पर सजेशन दी है और एग्जीक्यूशन में जो है कि इसको ले गया।
तो क्लोरीन का रेशो वो उसके लिए
उसमें जो 0.05 हमने रखा था, ये हमने जो अपने जो डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ अथॉरिटी है उनसे फिर लिया, तो उन्होंने हमें बताया कि आप अगर ह्यूमन बॉडी का है तो आप 0.05 तक जो है कि वो इसको कर सकते।
ठीक है, तो वो आपने करके अब ये आपने 10 घंटे में आपके 9 लोगों ने ये बना दिया और आपने फिर उसको इंस्टॉल भी कर दिया। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, लोग उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और क्लोरीन को कब कब आप दोबारा भरते हैं?
जी मैम, इसमें ये मैम इसका हमने टाइमिंग रखे हुए हैं सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक, क्योंकि ये सब्जी मंडी की एक्टिविटी जो है ये 6 बजे से लेके 9 बजे तक होती है और उसमें ज्यादा लोग होते हैं, तो हम इसको जो सुबह जो है कि वो उसको उस टैंक में भरते हैं और उसमें 1800 लीटर का वो टैंक है, वो जनरली जो है कि वो एक टैंक जो है काजिया तक कभी को हो तो हमें जो दूसरा जो है कि वो भरना पड़ रहा है, जनरली उसी में हमारा हो जाता है। वो सारी जो शिफ्ट है 6 से 9 बजे की वो पूरी हो जाती है, बाकी इसकी लेंथ जो है कि वो ये 20 फीट तक लेंथ में है मैम और 6 फीट इसकी 8 फीट 6 फीट इसकी विड्थ है और तकरीबन 10 फीट के करीब इसकी हाइट है।
तो इसमें आपने किसी से टेस्ट नहीं कराया, साइंसदानों को तो इस पर कोई एतराज नहीं हो रहा कि आपने ये जो पब्लिक प्लेस पे लगा दिया, इसके कोई मुजिर असरात भी हो सकते हैं?
मैम वो अभी हमारी जो है कि वो प्रोविंशियल जो हेल्थ की टीम है वो इसको देख रही है, इसको जो कि इसका जो फॉर्मूला जो इसके लिए वो यूज करनी है क्लोरीन, तो उसका क्या है। बाकी जो हमने डिस्ट्रिक्ट की जो हेल्थ अथॉरिटी थी उनसे पूछा था, उनने कहा कि जनरली क्लोरीन आप स्विमिंग पूल में भी यूज होती है और ये वाटर प्योरीफायर के तौर पर भी यूज होती है, तो इतना इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप बिल्कुल इसको थोड़ा करते हैं। और दूसरा एक्सपोजर जो है एक आदमी का गुजरने वाले का भी कोई वो बहुत ज्यादा नहीं, मैक्सिमम जो है कि वो फ्यू सेकंड में इसमें से गुजर जाता है, तो इसका एक्सपोजर भी इतना नहीं है, तो इट्स नॉट दैट इसके साइड इफेक्ट डेंजरस या वो इस तरह नहीं है।
लेकिन ये तो वो है ना कि जो उसमें से गुजर रहे हैं वो डिसइंफेक्ट हो गए, लेकिन अगर उसमें से कोई ऐसा शख्स गुजरा जो कि खुद उसको कोरोना वायरस है और उसको पता भी नहीं है, तो क्या उस गेट में उसके कोरोना जरासीम जो है वो छोड़ नहीं जाएगा?
लेकिन मैम वो तो उसकी कंटिन्यूअसली डिसइंफेक्शन हो रही है, अगर वो छोड़ भी जाता है उसमें तो उसकी तो डिसइंफेक्शन हो रही है, तो वो इनर बॉडी तो नहीं वो कर सकती डिसइंफेक्ट क्लोरीन, लेकिन आउटर जो है वो अगर उसमें गेट में कुछ छोड़ के जाता है तो वो तो डिसइंफेक्शन उसकी हो जाएगी।
ठीक, तो आपने आपको डीसी के झंग के डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, तो क्या आपको ये इरादा है कि ऐसे और भी गेट थ्रू बनवाए जाएं और वो अस्पतालों के बाहर या दूसरे पब्लिक प्लेसेस पर रखे जाएं? और ये भी बताइए कि इस पर कितनी लागत आती है और आपकी आई?
इसमें जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं प्रोविंस के, वो उनकी हमेशा जो है कि हमें यही डायरेक्शन होती है कि वो आपको यू हैव टू बी मोर इनोवेटिव इन लिमिटेड रिसोर्सेज के, थोड़े मसाइल खर्च करके तो आप इनोवेशन जो है कि वो दे के आए आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर उन्होंने न्यू चीजें जो है कि वो इंट्रोड्यूस इसमें करवाई भी है, सेटअप में डिजिटाइज करवाई हैं चीजें, जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस कम करवाई है, तो काफी उन्होंने डिजिटाइजेशन में वो किया है, तो अब उनके पास जो है कि वो गया है और वो मेरे ख्याल में इसको चीफ सेक्रेटरी साहब ने डायरेक्शन दिया है कि इसको रेप्लीकेट करें दूसरी सब्जी मंडी,
सिर्फ सब्जी मंडी में या दूसरी जो पब्लिक की प्लेसेस हैं जैसे हॉस्पिटल है?
इनिशियली जी मैम, इनिशियली जो है सब्जी मंडी में ये हो रहा है और आगे फिर जो है कि जब प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट इसको प्रॉपर मेरे ख्याल में जो इसमें डालना क्या क्लोरीन की कितनी वो सारी चीजें उसके बाद इसको फर्दर जो है कि वो करेंगे, और प्राइवेट सेक्टर में तो ये काफी ज्यादा लोग लगा रहे हैं, जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं वो तो कंपनीज हैं दूसरी हैं, वो तो काफी लगा रहे हैं।
तो इस वक्त आप हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि अगर कोई इनोवेशन करना चाहता है और ये गेट थ्रू अपने बनाना चाहता है तो वो आपसे किस तरह रابطہ करे?
मैम मेरा अपना सेल नंबर है, फिर मैंने इसकी एक वीडियो जो है कि वो यूट्यूब पे भी मैंने अपना अपलोड की हुई है मेरे ऑफिस ने, और उससे जो है कि वो आप गाइडलाइन जो है वो सारी मिल सकती है, और जो कि उसमें प्रॉपर चीजें वो बताई भी हुई हैं कि कौन सी चीजें जो है कि इसमें इस्तेमाल होंगी और कैसे ये बनेगा, तो उसमें सारा हमने दे दिया।
तो कितनी लागत आई इस पर?
ये मैम चूंकि हमारी तो फर्स्ट एफर्ट थी, उसमें कुछ चीजें हमने लगाई फिर उतारी, तो उसमें थोड़ा हमारा 1,80,000 तक का एक्सपेंडिचर हुआ था, 1,80,000 का। लेकिन अभी अगर हम इसको जो दूसरी सब्जी मंडियों में हमने इसको रेप्लिकेट किया है, जिससे कि क्योंकि 4 सब डिवीजन जो मेरे पास हैं, तो उनमें से बाकी सब डिवीजन उनमें हमारी जो है कि वो एक में 80,000 के करीब आई है, वो थोड़ा छोटा है, वो वॉक थ्रू गेट है। इसके अलावा एक में और थोड़ा छोटा किया है, वो हमने 30,000 में बना लिया। तो ये उस वेरी करता है कि आपने कितनी वो बड़ी बनानी है, और फर्स्ट टाइम की आपको पता है कि थोड़ी वो उसमें एक्सपेरिमेंट करते, कोई पाइप लगाया, कोई वो नहीं ठीक लगा, या कोई उसमें स्ट्रक्चर बनाने में जो है ना कि वो आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो वो परफेक्शन लाने के लिए, तो आप जो कि हमें पता लग गया कि क्या क्या करना है, कौन सी नोजल है हमें, हमने किस साइज की नोजल लगानी है जिसमें से वो फॉगिंग निकलेगी, कौन सी कंपनी की लगानी, तो पहले हमने नोजल भी 2-3 दफा चेक की थी, 3 दफा हम चेंज की थी गई, एक दफा लगाई तो वो नहीं फॉग बना रही थी, फिर दूसरी दफा लगाई तो वो भी पानी ज्यादा फेंक रही, तो इस तरह आप जो है कि जब हम नए सिरे से बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत कम आ रही।
और बल्कि आप अगर कुछ और गाइड करना चाहें मुझे कि जंग में और कुछ क्या हो रहा है कोरोना वायरस के हवाले से, तो वो भी आप इस पर बता सकते हैं।
जी इसमें मैम कोरोना वायरस के सिलसिले में हमने तकरीबन सबसे पहले तो एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, उसमें तकरीबन 200 लोगों की हमने रखी है कैपेसिटी, फिर एक हमने पूरा हॉस्पिटल जो है कि वो उसको हमने पूरी तरह आइसोलेट जो है कि वो किया, आइसोलेशन सेंटर बनाया है, उसमें भी हमने पर्सनल हाइजीन किट से लेके तो वो सारी चीजें जो है कि वहां पे रखी हैं, लैब जो है कि वहां पे बना दी हैं, फिर उसके अलावा हमने एचडीयू जो है वो पेशेंट्स के लिए वो बनाया है, तो जो बहुत ज्यादा जो है कि कंफर्म हो जाते हैं, और वहां पे वेंटिलेटर वगैरह वो है, फिर हमने पूरे सिटी में जो एंट्री और एग्जिट है वहां पे हमने वहां पे डिसइंफेक्ट करने के लिए लोग जो है कि वो हैंड वॉशिंग और गाड़ियों की वो डिसइंफेक्शन के लिए लोग खड़े किए हैं, फिर हमने तकरीबन 75 जो प्लेसेस है वहां पे हमने हैंड वॉश और उसके लिए जो है कि वो लगाए हैं, अपना पानी के जो हमारी टैंकियां हैं वो पड़ी हैं, सोप पड़ा है, वो दूसरा वो सारी चीजें पड़ी हैं, फिर इसके अलावा जो हमारे बैंक्स हैं, हमारे जो भी जहाँ पे लोगों का रश होता है वहां पे सैनिटाइजर, दूसरी सारी चीजें इस तरह की, और डिस्टेंसिंग जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हमने सर्कल्स लगा के, तो वहां पे लोगों खड़े जहाँ पे भी क्राउडेड प्लेसेस है उसको इंश्योर कर रहे हैं, और बाकी जो है जितने पिलियन राइडिंग है वो डबल सवारी जिसमें 2-4 लोग इकट्ठे होके, उन चीजों को जो है कि हम काउंटर कर रहे हैं, तो जितनी भी हम, और फिर इसके अलावा जितनी रोड्स हैं, जितनी अहम गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनको हम जो है कि वो डिसइंफेक्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, हमारे रेलवे स्टेशन को हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, बस स्टेशन को हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, तो जो इदारे भी जितने हैं गवर्नमेंट के उनको हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं।
वाह, तो बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भट्टू साहब, आपने बड़ी तफसील से हमें बताया कि जंग में इस वक्त जो इंतजामिया है वो क्या इकदाम कर रही है अपने शहरियों को कोरोना वायरस के मुजिर असरा से बचाने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, हर क्राउड की जगह पर भी और जो दूसरी जगह है जहाँ क्राउड नहीं है वहां पर भी इंतजाम हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये थे जंग के डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू, जो बात कर रहे थे जंग में इंतजामिया की जानिब से तैयार किए गए एक डी सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट की, जिसे सब्जी मंडी के बाहर नस्ब किया जा चुका है। लेकिन क्या इस वॉक थ्रू गेट के नस्ब होने का मतलब ये है कि लोग बेखौफ और खतर हर वक्त और तवातुर के साथ सब्जी मंडी में जाते रहें? ये सवाल जब हमने किया इंडस हॉस्पिटल लाहौर के सीनियर मेडिकल रजिस्ट्रार डॉक्टर काशिफ सलीम से, तो उन्होंने बताया।
अच्छा, ये तो इस तरह के वॉक थ्रू गेट जो है ये वर्ल्ड में और भी जगहों पे बनाए गए हैं, जो कि इनका पर्पज ये है कि लोगों को डिस इन्फेक्ट किया जाए, यानी कि लेस से लेस ऑर्गेनिज्म जो बॉडी पे आ जाते हैं वो उनको कम से कम उनकी मिकदार रखी जाए। जो कोरोना वायरस में इस टाइम ये जो पैंडेमिक आई हुई है, इसमें यह है कि लोगों की गैदरिंग को कम से कम रखा जाए, लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल आइसोलेशन को रखा जाए। ये जो गेट्स हैं ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर लोग जमा हो रहे हैं, जिस तरह हॉस्पिटल जैसी जगह है उसके गेट पे तो रखे जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेसेस में इतने कोई कारामद या गुड साबित नहीं होंगे, क्योंकि जो इसका कोरोना वायरस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो टच कॉन्टेक्ट के अलावा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स भी हैं। अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी इन्फेक्टेड है या उसमें सिम्टम नहीं भी आ रहे, वो भी अगर उस गैदरिंग में चला जाएगा तो ही विल बी द सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। तो इसलिए इन गेट्स को अवॉइड ही रखना चाहिए, क्योंकि इससे फॉल्स परसेप्शन पीपल में जाएगी कि वो अपने आप को समझेंगे जिस तरह वो वायरस का इन्फेक्शियस का सोर्स नहीं बन सकते, जबकि वो फिर भी हो सकते हैं। तो इस सिनेरियो में खासतौर पे जो भी पेंडेमिक चल रही है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में, तो इसमें इस तरह की चीज को अभी नहीं प्रमोट करना चाहिए। अभी लोगों को ये करना चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, होम आइसोलेशन रखें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो गैदरिंग को अवॉइड करें।
लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा कि जाहिर है लोगों को अपनी जरूरी चीजें खरीदने के लिए सब्जी मंडी तो जाना पड़ रहा है, तो उनके लिए आप क्या उसको भी आप डिस्करेज कर रहे हैं?
नहीं, उसके लिए भी चलिए ठीक है, जिस तरह इस तरह की जगह जहाँ पे अनअवॉइडेबल प्लेसेस है, जिस तरह सब्जी मंडी जैसी जगह जो गवर्नमेंट ने भी कहा है कि ये बंद नहीं किए हैं, उसके अगर उन्होंने दरवाजे पे ये लगा दिया, लेकिन फिर भी लोगों को इस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए कि जिस तरह हम इससे बच जाएंगे। मैंने जैसे पहले ही कहा कि ऐसी जगह जहाँ पे अनअवॉइडेबल आपका जाना बड़ा जरूरी है, लाइक हॉस्पिटल चले, अगर कोई सब्जी मंडी है वहां पे जाहिर बात है लोगों ने चीजें लेने जाना होता है, फिर भी वो अपने आप को अगर इधर से गुजारे तो जो रेस्पिरेटरी की जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसकी प्रिवेंशन वो रखें, मास्क पहने और एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस फिर भी रखें। ये नहीं होना चाहिए कि इस वॉक थ्रू गेट से जाएं और फिर वो आपस में एक दूसरे के करीब रहें, ये चीज फिर भी नहीं होनी चाहिए। लाइक सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको फिर भी मेंटेन रखना ही है,
और कोशिश करें कि बहुत कम जब भी सामान खरीदने जाना हो तो एक ही बार सारा सामान खरीद लाएं, बार बार ये समझ करके, क्योंकि वहाँ वॉक थ्रू गेट है तो चलो वहाँ चले जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए।
एग्जैक्टली, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करना है ज्यादा से ज्यादा, और जो है डिस्टेंस एटलीस्ट 1 to 2 मिलीमीटर का मेंटेन रखना है। उनको जाना तब ही चाहिए जब बहुत जरूरी है सामान, एक ही मरतबा हफ्ते की लोगों को चाहिए कि ग्रोसरी करके आ जाए, वहां से एक ही हफ्ते का सामान खरीद लें, रोज रोज भी जाने की ये ना करें, वो इस समझे कि ये वॉक थ्रू गेट से हम गुजरेंगे तो हम सेफ हैं, वो रोजाना इस चीज को अपना मामूल बना लें। नहीं, ऐसा नहीं करना, जाना उस टाइम है जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो और आपने फिर इस गेट से आप गुजर भी जाएं, फिर भी आपने मास्क आपने पहन के रखना है और एटलीस्ट 1 to 2 मीटर का डिस्टेंस फिर भी रखना ही है। आप अगर सब्जी मंडी के अंदर भी या ऐसी जगह पे जहाँ पे अनअवॉइडेबल गैदरिंग है, फिर भी आपने ये प्रिकॉशन रखनी ही रखनी है।
इसके अलावा और क्या प्रिकॉशंस आप इस वक्त हमारे सुनने वालों को बताएंगे?
आजकल के सिनेरियो में जैसे कि आप सोशल मीडिया न्यूज वगैरह में भी आप पढ़ते रहते हैं, काफी ज्यादा प्रिकॉशन है। एक चीज जो मैंने नोटिस की है, जो मैं लोगों को भी इस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, हमारे घरों में हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो कि मोर देन 50 ईयर एज के होते हैं, एक चीज है कि उन लोगों से भी डिस्टेंस आपने रखना है। उन लोगों का आपने ठीक है आपने टेक केयर करनी है, लेकिन उन लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये बहुत जरूरी है। एटलीस्ट वहां भी 1 to 2 मीटर का आपने डिस्टेंस रखना है। अगर आपने उनको खाना देना है, खाना देकर आप उनके करीब मत रहें, उनसे दूर रहें, किसी छोटे बच्चे वगैरह को उनके से ना मिलें, और अगर कोई बाहर से कोई आता भी है मिलने उसको भी कहें कि उनको हाय है टच नहीं करना, उनसे दूर दूर ही रहना है, क्योंकि खुदा ना खासा अगर किसी मोर देन जो 50 एज के बुजुर्ग हैं उनको ये इन्फेक्शन हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड जितना भी रिकॉर्ड का हम डाटा देख रहे हैं पीपल का, उन लोगों में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा आ रहा है। इवन चाइना में भी जो था, इटली में भी, ये जो लोग मोर देन 50 है उनमें 15% मोर्टेलिटी रेट है। अदरवाइज ओवरऑल वर्ल्ड में यही स्टार्ट में था, जो चाइना का डाटा था उसमें 2.5% मोर्टेलिटी था, लेकिन जो ओल्ड पीपल है उनमें ये डिजीज बहुत ज्यादा सीवियर है, और वर्ल्ड वाइड हर जगह पे ऑलमोस्ट वेंटिलेटर की भी कमी है,
ये चीज का ख्याल रखना है कि जो ओल्ड पीपल है वो इस इन्फेक्शन का शिकार ना हो, और उन लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग एटलीस्ट 1 to 2 meter का डिस्टेंस मस्ट मस्ट रखना है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी तो बात करने की जरूरत है, इवन घर में भी रहते हुए आप फोन कॉल से हमसे बात करें, उन लोगों के साथ आप लोगों ने उनकी हिफाजत बहुत ज्यादा से ज्यादा करनी है।
बेबी के जो जवान लोग भी घर से बाहर निकलते हैं वो अगर कोई वायरस लेकर आ जाते हैं अपने साथ कोरोना वायरस, तो खदशा यही है कि वो तो शायद बच जाएं लेकिन उनके बुजुर्गों को वो जल्दी लग सकता है अगर घर में।
जो जवान लोग हैं जाहिर बात है उनकी कुव्वत मुदाफत ज्यादा होती है, जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी कुव्वत मुदाफत इम्यूनिटी कम होती है, फिर उनमें से कुछ लोग होते हैं जो डायबिटीज हाइपरटेंशन कोई कार्डिक डिजीज के पेशेंट्स होते हैं, फिर उन लोगों को ज्यादा उन लोगों में ज्यादा खतरनाक इस बीमारी का चांस होते हैं। तो इसलिए जो है घर के भी जितने अफराद हैं वो अपने ये जो बुजुर्ग हजरात हैं इनसे कम से कम डिस्टेंसिंग रखें, उन लोगों को भी बताएं कि ये इस टाइम डिजीज चल रही है, उनको समझाएं कि ऐसा नहीं है कि हम आपसे नाराज हैं या कोई आपके पास नहीं आना चाहते हैं, बस ये टाइम गुजर जाएगा तो फिर हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ आ जाएंगे, लेकिन इस टाइम पर उन लोगों का ख्याल इसी तरह से रखा जाए कि उनसे कॉन्टेक्ट उनसे कम उनके सामने उनको छूना कम से कम रखा जाए।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ सलीम।
ये थे इंडस हॉस्पिटल लाहौर के सीनियर मेडिकल रजिस्ट्रार डॉक्टर काशिफ सलीम।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर ये है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से कोरोना के बारे में इस पहले खुसूसी प्रोग्राम के साथ, जिसे स्टूडियो की बजाय घर में तैयार किया गया है, मैं हूँ यास्मीन जमील। लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद लोगों को घरों ही में किसी भी तिब्बी मसले या कोरोना की किसी भी अलामत के बारे में रहनुमाई के लिए पाकिस्तान में टेलीमेडिसिन सेंटर्स कायम हो रहे हैं। ऐसा ही एक सेंटर कायम हुआ है डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची की डिजिटल लाइब्रेरी में। इस बारे में हम इस वक्त आपको इस टेलीमेडिसिन सेंटर के एक फोकल पर्सन डॉ यूनिवर्सिटी कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सितारा इम्तियाज ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर शोएब अहमद की गुफ्तगू सुनवा रहे हैं, तो लीजिए सुनिए।
इस प्रोजेक्ट में तो आप यूँ समझ लें कि तमाम जो हॉस्पिटल है वो इन्वॉल्व है उसमें, मगर जो इसके मेन क्लिनिकल जिन शोबों को आप जानते हो उनमें जो है वो मेडिसिन है यानी शोबा तिब, उसके बाद सर्जरी है, ठीक है, उसके बाद जो है वो अपना गायनेकोलॉजी है, औरतों के मसाइल जो है चिल्ड्रन से रिलेटेड है पीडियाट्रिक्स, उसके बाद जो है वो साइकेट्री है जो सैनी सेहत है उसके मुतालिक है, और भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। चूंकि आज पहला दिन था तजुर्बाती बुनियाद में हमने किया, हमने 8 स्टेशन बनाए हैं, वो फिर बाद में जैसे जैसे चीजें एडअप होती जाएंगी वैसे वैसे डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल।
तो क्या ये कोई खास मरकज बनाया है, किस जगह पर ये काम शुरू हुआ है और कितनी टेलीफोन लाइनें लोगों को दी गई हैं?
जी, ये हमारा जो काम शुरू हुआ है ये हमने जो डाओ की डिजिटल लाइब्रेरी है उसमें हमने इसको एस्टेब्लिश किया है, जिसमें हमारा आईटी डिपार्टमेंट है वो इसमें पेश है, और वहां पर जो है वो 8 स्टेशन हमने बनाए हैं और लाइंस भी जो है वो 8 लाइंस हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमने 8 लाइनों को इसको रखा है और जो कि क्लोजली मॉनिटर होती है और हर कॉल जो है उसका रिकॉर्ड किया जाता है।
तो कोई खास नंबर जो आप इसे बताना चाहें हमारे सुनने वालों को?
कराची अपना पाकिस्तान का कोड जैसे है 92 करके, और कराची का 02138732032। मैं दोबारा बयान करता हूँ, 02138732032।
अच्छा, लेकिन ये तो यानी कराची के अलावा दुनिया भर में कोई भी आपसे रابطہ कर सकता है?
जी, कोई भी रابطہ कर सकते हैं दुनिया भर से, जो वो आप पाकिस्तान का कोड लगा के आगे 21 और अगला नंबर, और इसकी आगे फर्दर 8 लाइन है वो डिफरेंट, वो आपको पर गाइड करता है खुद से, जो ऑटोमेटेड रिकॉर्ड मैसेज है वो आपको गाइड कर देगा कि अभी आप ये दबाएंगे तो आप 1 दबाएंगे तो मेडिसिन के शोबे में चले जाएंगे, 5 दबाएंगे तो साइकेट्री में चले जाएंगे, 6 दबाएंगे तो पीडियाट्रिक्स में चले जाएंगे, ऐसे।
ठीक है, तो लेकिन आप लोग फिर मेडिसिन भी सजेस्ट करेंगे तो मेडिसिन की फराहमी का क्या बंदोबस्त होगा?
बगैर देखे तो किसी भी मरीज को आप बहुत सारी दवाएं तो नहीं दे सकते, मगर उनको उस इमरजेंसी की सूरत हाल में आप गाइड कर सकते हो। अगर कोई कहता है कि मुझे यहाँ पर पेट में शदीद दर्द है तो आप उसको एडवाइस कर सकते हो कि आप ये एहतियात करो और ये दवा ले लो फिलहाल, जब तक कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता नहीं कर पाते اور وہ ہم ان کو جو ہے وہ پھر میڈیکل سٹورز جو ہے وہ اتفاق سے ان حکومت نے کھولے ہوئے ہیں اور وہ صبح سے لے کے تو شام 5 بجے تک کھلے رہتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جتنے بھی ہاسپٹل ہیں بڑے بڑے ان کے ساتھ جو میڈیکل سٹورز ہیں وہ 24 آورز کھلے ہوئے ہیں.
نا ٹائمنگز کیا ہیں اس وقت ان کے اور آئندہ کیا ٹائمنگز میں تبدیلی کا خیال ہے؟
جی ہمارے جو ابھی فی الحال تو ہمارے ٹائمنگ صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک. اس کے بعد اس کا ریسپانس دیکھ کے, چونکہ آج میں وہاں گیا تھا تو بڑا ہی اوور ویلمنگ ریسپانس تھا, بہت کالز آ رہی تھی, ڈفرینٹ لوگوں سے لوگ بات کرنا چاہ رہے تھے اور تو وہ واز ویری انکریجنگ. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ مستقبل قریب میں ہم اس کو جو ہے وہ ہمیں اپنا ٹائم بڑھانا پڑے گا یا کم از کم 2 شفٹ میں ہمیں کرنا پڑے گا, کہ ہم صبح 9 سے 2 تک کر لیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 سے 6 تک کر لیں یا 4 تک کر لیں, وٹ ایور, اس طرح سے ہم اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں آگے جا کے.
تو بریگیڈیئر ڈاکٹر شعیب احمد صاحب, یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں اور آپ تو کراچی میں ہیں, کیا لوگوں کا نفسیاتی حالت کیا ہے؟ کیا لوگ ڈرے ہوئے ہیں یا کچھ لوگ بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہیں؟ کیا کہیں گے ان کی کیا اس وقت حالت؟
وہ اس طرح کا دباؤ نہیں ہے جس طرح کے مغربی ممالک میں آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ بالکل خائف ہو گئے, بالکل اندر بند ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ چیز یہاں پر ابھی تک نہیں ہے. اور اس کے دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ اموات بھی نہیں ہوئی اتفاق سے, مگر ذہنی دباؤ ضرور ہے لوگوں کا اور بہت زیادہ وہ ہمیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. چونکہ جو گھبراہٹ کا دورہ ہے یا پینک اٹیک ہے یہ ایک بہت عام چیز ہے, ویسے ہی انگزائٹی بہت بڑھ جاتی ہے اور اس میں جو وہ آپ ایک دم سے ان کو پینک اٹیک ہو جاتا ہے, سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں شاید جو COVID-19 جو ہے نا اس کے علامات شروع ہو گئے اور اب ہمارے پیپڑے جواب دے گئے ہیں, پھر وہ اس ہاسپٹل اس ہاسپٹل اس ایمرجنسی اس ایمرجنسی, ٹھیک ہے نا, سو دے مین برڈن ٹو دی ہیلتھ سروسز. تو وہاں پہ پھر ان کو جو وہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے, اور اس سے پھر بہت ساری بہتری ہو جاتی ہے, ان کو میڈیسن دے دیتے ہیں, ان کو ریلیکس کرنے کے لیے میڈیسن دے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ.
ٹھیک, بہت شکریہ بریگیڈیئر ڈاکٹر شعیب احمد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کراچی کی ڈیجیٹل لائبریری میں جو ٹیلی میڈیسن سینٹر قائم ہوا ہے, اس کے فوکل پرسن ڈاؤ یونیورسٹی کراچی کے انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئرل سائنسز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ستارہ امتیاز, بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر شعیب احمد کی گفتگو آپ نے سنی. اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس کی ابھی تک کوئی مستند دوا سامنے نہیں آئی ہے اور اس کے علاج کے مختلف طریقوں پر ریسرچ جاری ہے, جن میں سے ایک پلازما تھراپی ہے. یہ تھراپی کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے, اس بارے میں ہم نے بات کی ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کراچی کے مولیکولر پیتھولوجی کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر سعید خان سے. آئیے آپ کو اس بارے میں ان کی یہ معلوماتی گفتگو سنواتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر پروفیسر سعید خان صاحب.
وعلیکم السلام
ڈاکٹر صاحب. یہ آج کل جو کرونا کے علاج کے لیے ریسرچ ہو رہی ہے پلازما تھراپی پر, تو کچھ بتائیے کہ یہ پلازما تھراپی ہے کیا اور کس طرح سے یہ کرونا کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے کرونا کے علاج کے لیے؟
کیونکہ کرونا کا انفیکشن یا نوول کرونا کا انفیکشن ایک نیا انفیکشن ہے اور اب تک کوئی حتمی علاج اس کا دریافت نہیں ہوا. سارے سائنٹسٹ جو جس اس فیلڈ کے ہیں وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں, چاہے مائکرو بایولوجسٹ ہو, چاہے امیونولوجسٹ ہو, چاہے اینٹی وائرولوجسٹ ہو, وہ سارے لوگ اس پہ کوشش کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی ایسے کوئی دوائی یا ویکسین بنا لے کے اس کا حل نکل آئے. تو ایک طرف سے تو اینٹی وائرل کا وہ شروع ہے کہ اینٹی وائرل بنایا جائے, وائرس کو کل کیا جائے, وہ سائنٹسٹ اپنا کام کر رہے ہیں. دوسری طرف سے جو امیونولوجی یا ہیماٹولوجی ایکسپرٹ ہے وہ اس پلازما تھراپی پہ کام کر رہے ہیں. اور پلازما تھراپی بیسیکلی ایک امیونولوجیکل ریسپانس ہے کہ جو مریض جو کرونا جن کو انفیکشن ہو چکا ہے اور وہ بیماری سے گزر چکے ہیں اور وہ صحتیاب ہو چکے ہیں, تو ان لوگوں میں اس وائرس کے خلاف اینٹی باڈی بن جاتی ہے جو وائرس کو کیور کر لیتے ہیں. اب یہ خود تو صحیح ہو جاتے ہیں لیکن وہ اینٹی باڈی ان کے بلڈ میں یا پلازما جو بلڈ کا ایک حصہ ہے لیپڈ پارٹ ہے اس میں یہ اینٹی باڈی موجود ہوتی ہے. تو پلازما تھراپی بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو بندہ صحیح ہو جاتا ہے ان کے بلڈ سے یہ پلازما الگ کیا جاتا ہے جس میں اینٹی باڈی موجود ہوتی ہے کورونا کے خلاف. اب وہ اینٹی باڈی یا وہ پلازما کا پھر دوسرے پیشنٹ جو کہ کرونا سے ریسنٹلی انفیکٹ ہو چکا ہے یا ان کی طبیعت بہت ناساز ہوتی ہے, تو ان لوگوں کو یہ پلازما انجیکٹ کرایا جاتا ہے جس میں یہ اینٹی باڈی موجود ہوتی ہے, جس سے وہ بندہ جو ہے وہ صحتیاب ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک تجرباتی عمل ہے, کافی چائنا میں اس کو کافی جگہوں پہ ٹرائی کیا گیا ہے اور اس سے کافی بندے جو صحتیاب ہو چکے ہیں. تو دوسری جگہوں پہ پاکستان میں بھی یہ عمل ابھی شروعات مراحل میں اور اس کو ٹرائی کیا جا رہا ہے.
کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے لوگوں کی تعداد کا اور اس کا ڈیٹا کہیں ایک جگہ موجود ہے جس کے ان کو پلازما کو استعمال کیا جائے گا جن کی اینٹی باڈیز کو؟
پاکستان میں تو یہ عمل شروعاتی مراحل میں, تو ابھی شروعاتی مراحل میں اور جو لوگ صحتیاب ہو رہے ہیں خود نیشنل طور پہ یا ان کو اگر اینٹی وائرل دیا گیا یا جو بھی لاسٹ پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا کہ دو تین اینٹی وائرل تک وہ دیے جا رہے ہیں, تو ان لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور کل بھی ایک جو پاکستان میں پہلا شخص تھا جن کا نام کافی مشہور ہو چکا ہے جعفری صاحب, وہ صحتیاب ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنا پلازما یا بلڈ ڈونیٹ کیا ہے ایک کلینک میں, اور وہ پلازما اب کیونکہ اس میں اپروول کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ گورنمنٹ کی طرف سے جب اپروول مل جائے گی تو وہ لوگ ٹرائی کریں گے اس پلازما کو ایز اے ٹریٹمنٹ پروسیجر. تو اب تک پاکستان میں یہ ٹرائی نہیں ہوا, لوگ جو ہے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے کون لوگ صحیح ہو چکے ہیں, کیونکہ آپ ضروری ہے کہ جو بندے صحیح ہو چکے ہیں ان کے بہت سارے ٹیسٹ بھی ہونے ہیں کہ وہ اس میں خدا نخواستہ وائرس تو موجود نہیں ہے. اگر آپ پلازما انجیکٹ کریں گے تو اس کے ساتھ دوسرے وائرسز بھی انجیکٹ ہو سکتے ہیں, تو اس کو پہلے کئی ٹیسٹ اس کے کرنے ضروری ہے. تو یہ پلازما تھراپی ایک اچھا عمل تو ہے لیکن یہ کافی مہنگا علاج بھی ہے کیونکہ اس کے بہت سارے ٹیسٹ آپ کو کرنے ہیں کہ اس بندے کو کہیں ہیپاٹائٹس سی نہ ہو, ہیپاٹائٹس بی نہ ہو, ایچ آئی وی کا نخواستہ نہ ہو, تو ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایک علاج کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی دوسری بیماری نہ ہو. تو وہ مراحل جو ہے وہ بہت ضروری ہیں کہ جو بھی آپ انجیکٹ کر رہے ہیں وہ دوسرے جراثیم سے پاک ہو.
ٹھیک, تو اس کے علاوہ دوائیاں جو آج کل استعمال ہو رہی ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے اور کچھ جو دوائیوں پر ریسرچ ہو رہی ہے کچھ ان کا بھی ذکر کر دیجیے.
جیسے میں نے بتایا کہ ہم جہد کوشش جاری ہے, کوئی حتمی علاج اب تک مصدقہ کہیں بھی پوری دنیا میں موجود نہیں ہے. ہر سائنٹسٹ, ہر ڈاکٹر, ہر ایکسپرٹ اپنے تحت کوشش کر رہا ہے کوئی اس مرض کا کوئی حتمی علاج ہو. تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کلوروکوین ایک اینٹی ملیریل ڈرگ ہے, اس کا ایفیکٹ کافی جگہوں پہ پازیٹو دیکھا گیا ہے کمبینیشن میں ہے. ایزیتروومائسین ایک اور اینٹی بایوٹک ہے, کیونکہ جب وائرل انفیکشن ہوتا ہے تو انفلمیشن کے بعد بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نمونیا کا اثر ہوتا ہے. تو کمبینیشن میں اینٹی بیکٹیریل ڈرگ جو ایزیتروومائسین ہے وہ استعمال کی جاتی ہے جس سے سیکنڈری انفیکشن صحیح ہو سکتا ہے. تو ایزیتروومائسین کمبینیشن میں کلوروکوین یہ کمبینیشن کافی جگہ استعمال کیا جا رہا ہے, پاکستان میں بھی اس کی کافی ٹرائل جاری ہے, کافی مریض اس سے صحتیاب ہو چکے ہیں. لیکن یہ وائرس ایسا ہے کہ ہر بندے میں اس کا ڈفرینٹ افیکٹ ہے, کچھ جگہوں پہ کسی ٹریٹمنٹ رسپانس میں یہ صحیح ہو جاتا ہے, کچھ میں کم ہو جاتا ہے, کسی دوسرے شخص میں زیادہ ہو جاتا ہے. تو علاج کافی جگہوں سے کوشش کی جا رہی ہے, کافی حد تک حوصلہ افزا نتائج حاصل ہو رہے ہیں, لیکن 100% کوئی علاج اب تک کامیاب نہیں ہے کہ بھائی جس طرح کوئی کنفرم کوئی دوائی آپ دے دیں اور 100% صحیح ہو جائے. تو مختلف مراحل سے چیزیں گزر رہی ہیں اور آہستہ آہستہ پیش رفت جاری ہے, اور حتمی علاج کے لیے کافی انتظار کرنا پڑے گا کہ کون سی کمبینیشن ایگزیکٹلی جو اس کے علاج کے لیے کام کر رہی ہے. پوری دنیا میں سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں, ویکسین پہ بھی کام جاری ہے, ویکسین کے ٹرائل جاری ہیں, اینٹی وائرل پہ کام جاری ہے. روزانہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں اینٹی وائرل نے کافی کام کیا, دوسرے اینٹی وائرل نے کام کیا. ری پرپزنگ آف ڈرگس کا بھی کنسیپٹ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسے ادویات جو کسی دوسرے مرض کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ کورونا کے لیے ریپرپز کیے جا رہے ہیں, کہ لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ جس میں ایک دوائی جو ہے کلوروکوین ہے جو اصل میں کورونا کے خلاف دوائی نہیں ہے بلکہ وہ ملیریا کے خلاف دوائی ہے, لیکن اس کا اثر کیا ہے. تو اب فی الفور اس کو, کیونکہ دوسری دوائی موجود نہیں ہے, اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سے کافی حد تک وہ بیمار حضرات یا مریض جو سیریس ہیں ان میں استعمال ان دوائیوں کا ہے
और उससे पॉजिटिव नतायज हासिल हो रहे हैं। तो जो लोग जिनमें शिद्दत नहीं है तो बीमारी की, उनको कोई दवाई देने की जरूरत यूजुअली महसूस नहीं की जाती और बंदे खुद ही सही हो जाते हैं। जो लोग क्रिटिकल हालत में हैं और या आईसीयू में चले जाते हैं तो उनको ये अद्वियात दी जा रही है।
जी, ये थे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची के मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdu.voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन का कोरोना वायरस के बारे में ये खसूसी प्रोग्राम, मैं हूँ यास्मीन जमील। और अब आपको यहाँ अमेरिका का कुछ अहवाल सुनाए मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के साइकेट्री डिपार्टमेंट की डॉक्टर फराज अमान अब्बासी की जबानी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फराज अब्बासी साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम यास्मीन, कैसी हैं
आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हम लोग वॉइस ऑफ अमेरिका से बात तो कर रहे हैं लेकिन हम इस वक्त घर से अपने सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं और वहीं से मैं आपको रिकॉर्ड करना चाहूंगी। कुछ बताइए, यहाँ पर अमेरिका में क्या क्या सूरत हाल है, खासतौर पर कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं?
जी यास्मीन, देखिए जो अंडरग्रेड प्रोग्राम्स हैं उसमें तो वैसे भी काफी कोर्सेज ऑनलाइन ऑफर होते हैं, तो बट अब सारी क्लासेस 100% ऑनलाइन स्विच कर दी गई हैं। सो सिवाय उन सब्जेक्ट्स के जो इंटरैक्टिव हैं, साइंस लैब्स हैं, रिसर्च है, उसमें अभी तक कुछ कंफ्यूजन है कि किस तरह वो तालीम स्टूडेंट्स को पहुंचाई जाए, पर ओवरऑल सब जगह आप देखें बड़ी परेशानी है। लोग कोशिश बहुत में है कि चीजें जरा नॉर्मल हो जाएं, कुछ वो हो जाए। एक तो मसला ये है कि शुरू में हमें कहा गया था कि 30 दिन की बात होगी, फिर वो 2 महीने हो गई और अब तो ये लग रहा है कि शायद 1-2 महीना और हमें इस तरह चलना पड़े, सो दैट वो फिर एंड ऑफ सेमेस्टर तक का मसला आ जाएगा।
तो यहाँ पर क्या मसाइल क्या है, क्या सबको आसानी सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या कुछ मसाइल भी पेश आ रहे हैं उनको?
जी मसाइल भी है, क्योंकि देखें हर स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर नहीं करते, कुछ जिनको अटेंशन और फोकस करने का मसला होता है फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करना। फिर आपके सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा वो चाहिए, एक क्या कहते हैं 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए, जैसे साइंस सब्जेक्ट है, जैसे लैब्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो आप नहीं कर सकते, आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वो करना। पर फिर दूसरा जो मसला हम देख रहे हैं, देखिए यूनिवर्सिटी कैंपसेस तो बंद हो गए और लोगों को अपने घर भेज दिया गया है, तो जो दूर दराज इलाकों में, यहाँ भी इवन अमेरिका में भी बहुत से इलाके हैं जहाँ इंटरनेट सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं है, तो उन बच्चों को मसला हो रहा है इंटरनेट, और जरूरी नहीं है कि हर एक के पास एक्सेस हो, तो वो एक मसला है। फिर दूसरा मसला इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का है कि जो यहाँ पे इस वक्त एक तरीके से अटके हुए हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि वो किस वक्त अपने घर जा सकेंगे, उनके लिए बड़ा मसला है इस वक्त ये ऑनलाइन क्लासेस और स्कूल को इस तरह चलाना।
तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं क्या वो अभी तक हॉस्टलों में रह रहे हैं या कहीं शिफ्ट हो गए हैं, उनका क्या बन रहा है इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद थे?
जी यूनिवर्सिटी तो बंद हो गई है, तो ज्यादातर लोगों ने अपना जो रेंट पे है, जो उन्होंने किराए पे लिया हुआ है या किसी जानने वाले के पास, पर यही है कि उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है, कहीं पे किरायों में आसानी की जा रही है, पर मसला ये है बहुत सी कंट्रीज शट डाउन पे हैं, तो वो उनको फ्लाइट्स ही नहीं है घर वापस जाने की, और फिर दूसरी बात ये भी है कि वो घर जाएंगे तो वहाँ इंटरनेट सर्विस क्या सिचुएशन है, वहाँ पे आपके टाइमिंग्स डिफरेंट हो जाएंगे, सो ये बड़े मसले हैं जो बहुत परेशानी का बाइस हैं।
ठीक, तो ये तो हुई बात तो यहाँ पर
स्टूडेंट्स की और ऑनलाइन एजुकेशन की. तो आप एक साइकेट्रिस्ट भी हैं और आप लोगों को इलाज की सहूलतें भी फराहम करती हैं और साथ पढ़ाती भी हैं. तो ये बताइए कि जो आपके जो पेशेंट्स हैं उनका क्या बन रहा है जिनके आप इलाज कर रही थी?
देखिए यास्मीन, ये तो पहले भी जितना भी देखें रिसर्च, अगर कोई नेचुरल भी हादसा पेश आते हैं तो जो जहनी मरीज हैं जो ऑलरेडी डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार है वो उनकी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है. इट बिकम्स बहुत ही मतलब तकलीफ दे बात हो जाती है उनके लिए. और उसके अलावा एक आम इंसान भी जब इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो उनके इट्स नेचुरल के हर कोई परेशान है. एंग्जाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है. तो कुछ लोगों को अक्यूट किस्म के सिम्टम्स होते हैं, कुछ के जो क्रॉनिक है जो लॉन्ग टर्म चल ही रहा था उस पे उनका फिर और अक्यूट सिम्टम्स हो जाते हैं. तो इस वक्त तो मैं यही, आप यकीन करें कि सुबह से शाम तक एक सिलसिला है कि हम इधर टेलीसाइकाइट्री के थ्रू मरीज देखने की कोशिश कर रहे हैं या हम फोनों पे जिस तरीके से भी रीच आउट कर सक रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ आपके प्राइवेसी इश्यूज भी बहुत हो जाते हैं. हिपा है, इंश्योरेंस के चक्कर है, तो हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ रहा है, पर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट.
तो डॉक्टर फरा साहब, ये बहुत से जो साइकेट्रिस्ट हैं यहाँ पर हर शोबे में काम करते हैं, खास तौर पर किन शोबों के साइकेट्रिस्ट या जो डॉक्टर्स हैं उनको मसाइल पेश आ रहे हैं इलाज के दौरान या इलाज करते हुए जिनको लाजमी तौर पर अपने पेशेंट्स के पास जाना ही पड़ता है?
जी, जैसे मैं आपको बताती चलूं यास्मीन, मैं इस वक्त डायरेक्टर हूँ जेरोसाइकाइट्रिक यूनिट मैक्लारेन हॉस्पिटल में. जेरोसाइकाइट्री मींस के 60 प्लस पेशेंट्स 65 प्लस. तो मेरे एवरेज पेशेंट के 70, 80, 90 इस किस्म के मरीज हैं मेरे पास. तो मसला ये हो जाता है कि जो आउट पेशेंट हैं क्लिनिक्स वो तो आप टेली साइकाइट्री में देख लेते हैं, लेकिन जो इन पेशेंट हैं जो बहुत सख्त बीमार मरीज हैं उनके लिए हमारे लिए बहुत चैलेंज हो जाता है कि आप वो आपसे बात ही नहीं जब कर सकते टेली साइकाइट्री में, तो आप उनकी तबीयत कैसे पूछेंगे, आप उनको कैसे चेक करेंगे. सो लेकिन जो सो इन दोस कंडीशंस वी आर डेजिग्नेटेड एसेंशियल सर्विसेज. अदरवाइज ये है कि डॉक्टर्स जो ईआर में हैं, जो फ्रंट लाइन पे डील कर रहे हैं इस इमरजेंसी से, उन्हें एसेंशियल माना जाता है. लेकिन जो हमारे इन पेशेंट साइकाइट्रिस्ट हैं या जो जेलियात में काम कर रहे हैं या जो स्पेशल पॉपुलेशंस के साथ हैं, स्पेशल नीड ऑटिज्म के बच्चे हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए इस वक्त वो भी एसेंशियल है. और या जो इमरजेंसी साइकाइट्री में काम कर रहे हैं तो उन्हें इस वक्त भी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है. और हम एक दो इंसिडेंसेस हमने सुने भी हैं मिशिगन में जहां ये साइकाइट्रिस्ट भी अफेक्ट हुए हैं और बीमार हुए हैं.
तो बेहद शुक्रिया डॉक्टर फरा बासी साहबा. एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी कि इस वक्त जनरली जो लोग हैं अमेरिका में उनको उनमें क्या सूरत हाल है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या वो पैनिक में हैं या वो रिलैक्स्ड हैं, या वो जब घरों में हैं तो क्या वो खुद को रिलैक्स फील कर रहे हैं, सेफ फील कर रहे हैं या डरे हुए हैं?
देखें इस वक्त सख्त एंग्जाइटी सबकी बढ़ी हुई है, परेशानियां बढ़ी हुई हैं. एक तो अपनी सेहत की फिक्र है, फैमिली सेहत की फिक्र है, पर बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई हैं या बहुत से लोग पर आवर जॉब्स पे थे जो अफेक्ट हो गया. तो ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, ये एक इमोशनल क्राइसिस भी है, एक अफरा तफरी कह सकते हैं, जहनी तौर पे परेशानी ये है. लेकिन जो हम देख रहे हैं जो बहुत परेशान कुल बात है वो ये है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, अब्यूज के केसेस हैं, डिवोर्स के केसेस हैं या जो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन सब के नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं.
डिवोर्स इस वक्त कैसे हो सकती है? वो तो सब घरों में बैठे हुए हैं, लड़के भी, तो क्या ऑनलाइन डिवोर्सेस हो रही हैं?
जी, ये डिवोर्स रेट्स का जो रिसर्च आई है ये चाइना से आई है।
अच्छा, ठीक है।
सो हम लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस भी काफी बढ़ गई हैं, और जो दूसरी चीज परेशान करने है कि जो गन सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट मिशिगन में 200% के हिसाब से बढ़ गई हैं। तो जो हमें फिक्र है कि देखें, जब आप परेशान होते हैं यूजली आप निकल के, घर से निकल के कहीं जा सकते हैं, कहीं ब्रेक ले सकते हैं। अब ये है कि आप कांस्टेंट एक जगह बंद हैं, जहाँ छोटे ये बड़े बच्चे अपनी परेशानियों के साथ मौजूद हैं, तो कहीं कोई ब्रेक नहीं मिलती फैमिली को। तो जो पहले भी मसले होंगे शायद जो अवॉइड हो जाते होंगे, जो रिजॉल्व हो जाते होंगे, वो इस वक्त कॉम्प्लिकेट हुए हुए हैं, क्योंकि हर एक इतना फ्रस्ट्रेटेड और जैसे बंद बैठा है एक छोटी जगह में, तो वो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ गए हैं।
तो लेकिन डॉक्टर फरा साहबा, हमने कुछ लोगों से बात की तो ये भी देखने में आया कि लोग बहुत खुश हैं कि उन्हें घरों में ब्रेक मिल गया, उन्हें अपने फैमिली के साथ रहने का मौका मिल गया, उन्हें स्कूलों से बचने का मौका मिल गया, उन्हें जॉब की ट्रैफिक के जो मसाइल थे जॉब पर जाने में वो खत्म हो गए। तो कुछ ऐसे भी आप देख रही हैं कि लोग कुछ इसको पॉजिटिव भी ले रहे हैं?
देखें जी, वो तो बहुत ही खुशकिस्मत तबका है जिसको माशी, जहनी और सामाजिक किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तो वो इसको छुट्टी करके मना सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ऑन सरफेस हाँ, जिनके पास अल्लाह का शुक्र है नेमतें हैं, एकदम से परेशानी नहीं है कि भाई कल कहाँ से खाना आएगा, कल बीमारी, कोई घर में बीमार नहीं है, कोई इस किस्म की परेशानियां नहीं है, तो वो वाकई इस वक्त उनको बड़ी खुशकिस्मत है वो तबका। लेकिन अगर उनके पास किसी भी एज ग्रुप के बच्चे घर में हैं तो जरूर परेशानी इस बात की है कि ये बच्चे देखिए, छुट्टियां भी एक हद तक ही आप एंजॉय कर सकते हैं। सो जब शुरू शुरू के हफ्ते, दो हफ्ते आपने एंजॉय किया, आपको बड़ा अच्छा लगा, सबको नई नई सबने बड़ी कुकिंग्स की और फेसबुक पे सबने डाला, पर आहिस्ता आहिस्ता जितना ये लंबा खिंचता जाएगा, मैं हमेशा ये अपनी ट्रेनिंग्स में बात करती हूँ कि हमें अब जरा इसको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी एक दो महीना और बात चलेगी आगे। अपना भी ख्याल रखना है और दूसरों का भी एहसास रखना है।
बेहद शुक्रिया डॉक्टर फराह अब्बासी साहबा, बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया
यासमीन। ये थी मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के साइकेट्रिक डिपार्टमेंट की डॉक्टर फराह जमान अब्बासी।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
कोरोना वायरस बहरान में बिजनेस कम्युनिटी अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा रही है, इस बारे में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की कुछ मुमताज शख्सियात ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु करते हुए कहा कि कोरोना बहरान में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा किरदार ये है कि वो अपने मुलाजिमों को बेरोजगार नहीं कर रही और बगैर काम कराए तनख्वाहें उनके घरों तक पहुँचा रही है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पैटर्न साबिक सदर और पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कराची के साबिक चेयरमैन जुबैर तुफैल ने कहा,
मौजूदा सूरतेहाल में पाकिस्तानी सनतकार और बिजनेसमैन जो हैं उनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हमारी हुकूमत के पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं हैं, तो बिजनेसमैन को इसमें आगे आना चाहिए और उन्हें ख़ास तौर पे जो कम आमदनी वाले एम्प्लॉयज़ हैं, अगर किसी वजह से फैक्ट्री बंद भी हो जाती है तो ये जो इब्तदाई चंद महीने हैं, जो एक से लेके दो या तीन महीने तक ये मामला चल सकता है, तो उनको उनकी सैलरीज देना मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है, चाहे वो फैक्ट्री प्रोडक्शन करे या ना करे। जब एक सनतकार जो है वो साल साल से जो मुल्क में आमदनी और बिजनेस करता है और प्रॉफिट हासिल करता है, तो मौजूदा सूरत हाल में उनकी जिम्मेदारी है कि इन तमाम लोगों का ख़ास तौर पर ख्याल रखे जो किसी भी वजह से जॉब से बाहर हैं।
इस वक्त पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी कोरोना बहरान से निपटने में क्या किरदार अदा कर रही है, इस बारे में उनका कहना था।
जहां तक आपने FPCCI के बारे में पूछा, FPCCI जो है ये तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस का एक इदारा है और तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशन पाकिस्तान के इसके मेंबर्स हैं। اور ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس صورت حال سے باہر نکلا جائے، کیونکہ ہر انڈسٹری کے مختلف مسائل ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جو بھی پروڈکٹ ہیں وہ یورپ اور یو ایس سے جاتی ہیں، اور اس وقت تمام یورپین اور یو ایس بائرز نے کہا ہے کہ فی الحال ان کو کوئی بھی چیز شپ نہ کی جائے، کیونکہ تمام شاپنگ مالز اور بند ہیں اور بزنسز بھی بند ہیں، لہٰذا تمام چیزوں کی پروڈکشن اگر کر بھی لی ہے تو اسے پاکستان میں ہی رکھا جائے. تو اس وجہ سے، اس صورتحال کی وجہ سے یہ لوکل مینوفیکچررز تکلیف میں ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ حکومت سے رجوع کریں، اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ان کی مدد کرے گا کہ اس میں ان کو صرف کیش فلو کا مسئلہ ہوگا. کیش فلو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر لے کے اس مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے.
تاہم زبیر طفیل نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک کا مکمل لاک ڈاؤن نہ کرے، کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی ایسا سوشل سسٹم نہیں ہے کہ لوگ غیر محدود یا کسی کم سے کم معینہ مدت تک بغیر کام کیے گھر بیٹھ کر اپنے گھر چلاتے رہیں. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ کچھ صنعتوں مثلا خوراک، آٹا، فارمیسی، صابن، ہینڈ واش، سینیٹائزرز جیسی انڈسٹریز کو ضروری قرار دے، اور ملازمین کی کم سے کم تعداد کے ساتھ اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کے ساتھ اپنی فیکٹریوں میں کام جاری رکھنے کی اجازت دے. سیالکوٹ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے چیف پیٹرن، سابق صدر اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے رکن ڈاکٹر نعمان ادریس بٹ نے، جو ہیلتھ کا سامان بنانے والی ایک فیکٹری کے مالک ہیں، بتایا کہ سیالکوٹ میں جو سپورٹس کی انڈسٹری کا ایک مرکز ہے، اس وقت صنعتکار اور ملازمین مل جل کر اس بحران سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہیں.
سیالکوٹ کی انڈسٹری اور یہاں کی ورک فورس نے ہمیشہ مل جل کر ہر قسم کی جو مشکل ہے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور کرونا وائرس کے دور میں بھی یہاں پر الحمدللہ، میں یہ پورے اعتماد اور فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت بھی اس میں کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے، اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے انڈسٹری اور ورکرز ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. انڈسٹری جو ہے الحمدللہ پوری پیمنٹس، پوری تنخواہ جو ہے اپنے ورکرز کو پے کر رہی ہے یہ لاک ڈاؤن کے درمیان میں، جبکہ پورا انڈسٹری سکھ بند ہے، اور یہ جو تنخواہ وہ پے کی جا رہی ہے وہ جو ہے وہ کسی قسم کی گورنمنٹ کی مدد کے بغیر اپنے تئیں کر رہے ہیں. اس وقت جو انڈسٹری ہے وہ چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے موومنٹس آسان نہیں ہیں، اور جو ہمارا جو کم اجرت والے ہماری ورک فورس ہے ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے، اس لیے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ ورکرز کو جو تنخواہ ہے وہ یا تو ان کے گھر میں پہنچائی جائے، یا ان کے چھوٹے چھوٹے گروپس میں ان کو بلایا جائے اور وقت پر ان کو تنخواہ دی جائے، لیکن زیادہ تر کوشش یہ ہے کہ ان کے گھر تک ان کی تنخواہ پہنچائی جائے. اس کے علاوہ بھی سیالکوٹ چیمبر کی سطح پر جو ہمارا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی کمیٹی ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے، اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ہمارے جو مستحق کمیونٹی کے افراد ہیں ان کے گھروں میں کسی صورت میں راشن کی کمی نہ ہو، اور اس کو پہنچانے کے لیے ایک مربوط اسٹریٹجی کے تحت وہ ان تک راشن پہنچانے کی اپنی بھرپور کردار ادا کر رہی ہے.
ڈاکٹر نعمان ادریس بٹ نے بتایا کہ سیالکوٹ چیمبر، سیالکوٹ میڈیکل کالج اور ایک مقامی ہسپتال کی جانب سے ایک قرنطینہ مرکز کی تشکیل میں بھی ایک کردار ادا کر چکا ہے.
یاسمین، اس کے علاوہ سیالکوٹ چیمبر مقامی ایک پرائیویٹ ہسپتال عمران ادریس ہسپتال اور سیالکوٹ میڈیکل کالج کے ساتھ مل کر ان کے ہاسٹل میں تقریباً 100 کمروں کا ایک کوارنٹائن سینٹر سیٹ اپ کر رہی ہے، جس میں بالکل فری آف کاسٹ سیالکوٹ چیمبر اور عمران ادریس ہاسپٹل کے تعاون سے سروس کرونا کے مریضوں کو پرووائڈ کی جائے گی. اس میں اس ہسپتال نے 10 وینٹیلیٹرز کے سے آراستہ پورے اسٹاف اور ڈاکٹرز کے ساتھ سروسز کے ساتھ ایک آئی سی یو بھی سیٹ اپ کیا ہے، جو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایک آدھ دن میں پوری طرح فنکشنل ہو جائے گا. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ گوجرانوالہ ڈویژن کا سب سے بڑا کرونا کے لیے سینٹر ہوگا.
یہ تھی کرونا بحران کے دوران پاکستانی بزنس کمیونٹی کے کردار پر ایک رپورٹ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے کرونا کے بارے میں ہمارا یہ خصوصی پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
This is VOA News.